ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम पांचवा स्कंद तीसरा अध्याय ऋषभदेव का जन्म। श्लोक संख्या 13। किंच अयम् राजऋषिः अपत्यकामः प्रजां भवादृशीं आशासानः ईश्वरं आशिषां स्वर्ग अपवर्गयोः अपि भवन्तुम् आपको भवन्तुम् उपधावति प्रजायाम् अर्थ प्रयत्यः धनदम् इव अधनः फलीकरणम् किञ्चायं राजऋषिः अपत्यकामः प्रजां भवद्वशीम् आशासानः ईश्वरम् आशिषां स्वर्ग अपवर्गयोः अपि भवन्तुम् उपधावति प्रजायाम् अर्थप्रयत्य धनदम् इव अधनः फलीकरणम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे ईश्वर, आपके समक्ष महाराज नाभि हैं, जिनके जीवन का परम लक्ष्य आपके ही समान पुत्र प्राप्त करना है। भगवान, आपकी स्थिति उस व्यक्ति जैसे है जो एक अत्यंत धनवान पुरुष के पास थोड़ा सा अन्न, क्षमा कीजिए, उसकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी है जो एक अत्यंत धनवान पुरुष के पास थोड़ा सा अन्न मांगने के लिए जाता है। पुत्रेच्छा से ही वे आपकी उपासना कर रहे हैं और आप उन्हें कोई भी उच्चतम पद प्रदान कर सकने में समर्थ हैं, चाहे वह स्वर्ग हो या मुक्ति लाभ। तात्पर्य, पुरोहित कुछ कुछ शर्मिंदा थे कि राजा नाभि ईश्वर से पुत्र का वर प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें स्वर्ग या वैकुंठ लोक भेज सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि श्री भगवान तक कैसे पहुंचा जाए और श्रेष्ठ वर मांगा जाए। वे कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। वे भगवान से कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगना चाहते। भौतिक ऐश्वर्य का अर्थ है धन, उत्तम कुल, सुंदर पत्नी तथा अनेक अनुचर, किंतु बुद्धिमान भक्त ईश्वर के ऐसे वस्तुओं की याचना नहीं करता। बस उसकी तो प्रार्थना है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी त्वयी। वे ईश्वर की प्रिय सेवा में निरंतर लगे रहना चाहते हैं। वे न तो स्वर्ग चाहते हैं न भवबंधन से मुक्ति। यदि ऐसा होता तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कदापि यह न कहा होता मम जन्मनि जन्मनि। जब तक कोई भक्त बना रहता है उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं रहता कि वह जन्म जन्मांतर जन्म लेता रहेगा अथवा नहीं। शाश्वत स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है श्री भगवान के धाम को वापस जाना। भक्त को भौतिक वस्तुओं से कोई सरोकार नहीं रहता। यद्यपि नाभि महाराज विष्णु जैसा पुत्र चाहते थे, किंतु ईश्वर के समान पुत्र इच्छा भी इंद्रिय तृप्ति का एक प्रकार है। शुद्ध भक्त तो ईश्वर की प्रेमा भक्ति में लिप्त रहना चाहता है। ओम ज्ञान तमिरांतिमरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। महाराज नाभि ने यज्ञ संपन्न किया था एक पुत्र की प्राप्ति के लिए। हालांकि वो भगवान विष्णु जैसा एक पुत्र चाहते थे, फिर भी ये एक भौतिक इच्छा होती है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद यहां तात्पर्य में समझा रहे हैं। जब हम भगवान के पास जाते हैं तो कोई भौतिक इच्छा लेकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन साधारणतः ये जगत में देखा जाता है कि प्राय जितने भी लोग आते हैं भगवान के पास, वो कोई ना कोई भौतिक इच्छा लेकर ही आते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्थो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। वो कहते हैं कि चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं और ये चार प्रकार के लोगों को उन्होंने सुकृतिनः कहा है। कृतिनः मतलब जो कोई विशेष कार्य करता है, और सुकृतिनः मतलब जो कोई विशेष अच्छा कार्य करता है। इसके विपरीत है दुष्कृतिनः, जो कोई विशेष बुरा काम करते हैं। दोनों तरह के लोग होते हैं। तो केवल जो सुकृतिनः होते हैं वो भगवान के पास आते हैं, भले कोई भौतिक इच्छा लेकर क्यों ना आए हों। और कौन से लोग ये चार तरह के सुकृतिनः होते हैं? आर्थो, आर्थः मतलब जो बहुत पीड़ित है, दुखी है, कोई रोग से छुटकारा चाहता है, किसी को कोई और समस्या है, नाना प्रकार की समस्या लेकर लोग यहाँ आते हैं कि हमारा दुख मिटाइए। जैसे कि कहावत है, दुख में सब हरी भजे, सुख में भजे न कोई, सुख में जो हरी भजे तो दुख कहाँ से होए। अगर हर एक व्यक्ति सुख की अवस्था में भी भगवान का भजन करे तो उसको दुख कहाँ से आएगा। लेकिन लोग इस बात को नहीं जानते, इसलिए जब जीवन में सुख आ जाता है भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख आ जाता है तो भगवान के पास भाग कर आते हैं, त्राही त्राही हमें बचाइए, हमें हमारी समस्या का समाधान कीजिए। तो सबसे पहले आर्थ, जो भगवान के पास आते हैं पीड़ा के निवारण के लिए। दूसरे है अर्थ आर्थी, अर्थ अर्थी मतलब जो कोई धन की प्राप्ति के लिए, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भगवान के पास आते हैं। मुझे मेरा बिजनेस, मेरा व्यवसाय में वृद्धि कराइए, मुझे पगार बढ़ाइए, मुझे लॉटरी टिकट मिलने दीजिए, मेरे पास ज़्यादा चांदी सोना घर गाड़ी सब आने दीजिए, अर्थार्थी। ज्ञानी या जिज्ञासु, पहले जिज्ञासु वो होता है जिसके हृदय में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होती है, ये लोग कौन हैं, ये मंदिर क्या है, ये गीता क्या है, चलो जाके देखते तो हैं, जिज्ञासु। और चौथा है ज्ञानी, खास करके जो सन्यासी होते हैं उनको इस श्रेणी में माना जाता है। वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं परम सत्य के बारे में, उनको स्पष्ट ज्ञान है नहीं कि भगवान कौन है, परम सत्य क्या है, लेकिन ज्ञान के खोज में है। तो ऐसे चार तरह के लोग भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। हालांकि ये निम्न श्रेणी की भक्ति है, इसको सकाम भक्ति कहते हैं, क्योंकि कोई भौतिक कामना लेकर व्यक्ति भगवान के पास जाता है, उच्च कोटि की भक्ति बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं उदार एवैते, कि ये जो लोग हैं उदार हृदय के हैं, हालांकि भौतिक इच्छा लेकर आ रहे हैं, फिर भी उदार हृदय वाले हैं। क्यों? क्योंकि कम से कम वो भगवान के पास तो जा रहे हैं, कोई देवी देवता के पास नहीं जा रहे हैं। किसको धन की आशा है, कम से कम चोरी नहीं कर रहा है, डकैती नहीं कर रहा है। किसी को कोई कष्ट है, पीड़ा है, कम से कम शराब के अड्डे में जाकर शराब पीकर अपने गम को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है। कम से कम जाकर निराश होकर आत्महत्या करने नहीं जा रहा है। कम से कम भगवान के पास तो आ रहा है, इसलिए उसको उदार हृदय वाला कहते हैं भगवान। लेकिन जो सबसे उदार व्यक्ति होता है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो भगवान के पास कोई भी कामना लेकर नहीं आता है। अगर इच्छा है उसके हृदय में तो केवल भगवान की सेवा की। सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहिता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सबसे ऊंचा धर्म वो है जिसमें कि व्यक्ति भगवान की भक्ति, उनकी सेवा करना चाहता है, लेकिन बिना कोई रुकावट के और बिना कोई हेतु के। अप्रतिहता मतलब बिना कोई रुकावट के, और अहितु की मतलब बिना कोई हेतु के, बिना कोई भौतिक कामना लिए हुए। ये श्रेष्ठ भक्ति है, उत्तम भक्ति है। और जो चतुर्विधा भजन्ते माम, ये चार प्रकार के लोगों की जो भक्ति है, वो सकाम भक्ति कहलाती है। धीरे 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 से जो व्यक्ति भगवान के पास भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए आता है, अगर वो भगवान के पास आते रहेगा अपनी इच्छा की पूर्ति के बाद भी, तो उसके हृदय का शुद्धिकरण शनै शनै होते रहेगा और फिर वो भक्ति के मार्ग में प्रगति करने लगेगा। और जब वो भक्तों के संग में आएगा तो उसे ज्यादा से ज्यादा प्रगति करने की संधि मिल जाएगी, और फिर वो तेजी से भक्ति या मुक्ति के मार्ग में प्रगति करता जाएगा। इस तरह से चाहे हमारे पास भौतिक इच्छा हो या न हो, हमें श्री कृष्ण के पास आना चाहिए। काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है, अगर कोई व्यक्ति अकाम हो, उसकी कोई कामना नहीं हो, या सर्व काम है, उसके पास सर्व कामनाएं हैं मन में, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदि, अगर उसके पास मोक्ष की कामना है, ऐसे उदार बुद्धि वाला व्यक्ति, उसको चाहिए कि वह किसी न किसी अवस्था में श्री कृष्ण की सेवा करते रहे। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा बहुत ज्ञान जानता है, उसको कोई भौतिक इच्छा लेकर नहीं आना चाहिए। उसे ऐसी अभिलाषा करनी चाहिए जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने किया है, जिसका उल्लेख श्रील प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में करते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिरहैतुकी त्वयि। चैतन्य महाप्रभु खास करके उन चीजों का उल्लेख कर रहे हैं जिसके पीछे आमतौर से दुनिया के लोग भागते हैं। धन, दौलत, नाम, इज्जत, स्त्री इत्यादि। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इन चीजों की अभिलाषा मुझे बिल्कुल नहीं है। मुझे क्या चाहिए? अहितु की भक्ति त्वयी, आपकी अहितु की भक्ति में चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहता। और कब तक चाहता हूं, किस परिस्थिति में चाहता हूं? क्या मैं स्वर्ग लोक में जाके आपकी भक्ति करना चाहता हूं? क्या मैं वैकुंठ लोक में जाके आपकी भक्ति करना चाहता हूं? किसी अमीर परिवार में जन्म लेके मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं? नहीं, मम जन्म जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहितु की त्वयी। जन्मनी जन्मनी, अगर बार बार मुझे यहां भौतिक जगत में जन्म भी क्यों ना लेना पड़े, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन आपकी भक्ति, आपकी सेवा करने की संधि मुझे मिलती रहने चाहिए। यह भक्त की खूबी होती है, जहां भी होता है वो भगवान की सेवा ही करता है। नारायण परहा सर्वे न कुटश्चन विभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। शिवजी पार्वती देवी को बताते हैं, महाराज चित्रकेतु का गुणगान करते समय नारायण पराह सर्वे, जो सारे नारायण परायण हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, न कुटश्च न बिभ्यति, बिभ्यति मतलब डरना, किसी भी अवस्था में कभी भी डरते नहीं हैं। क्यों? स्वर्ग अपवर्ग, चाहे स्वर्ग लोक में हो या मुक्ति की अवस्था में हो, वो केवल भगवान की भक्ति ही करते हैं। भगवान के भक्तों के, भगवान की भक्ति के अलावा और किसी चीज में रुचि नहीं रखते। तो ये है भक्ति और भक्तों के गुण, उनके लक्षण। यहां पर महाराज नाभी सर्वोच्च श्रेणी के भक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए पुरोहित थोड़े शर्मिंदा हो रहे हैं। जो ब्राह्मण थे वहां यज्ञस्थली में, जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से थोड़ा शर्मिंदा होकर कह रहे हैं, आप तो सब कुछ दे सकते हैं, आप वैकुंठ लोक दे सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं, ठीक है वैकुंठ लोक नहीं स्वर्ग भी दे सकते हैं आप, लेकिन ये जो यजमान हमारे हैं महाराज नाभी, वो आपके पास एक पुत्र की प्राप्ति करने के लिए आए हैं। और ये जैसा है कि एक गरीब आदमी जब कोई बहुत ही अमीर आदमी के पास जाता है और जाके थोड़ा अन्न मांगता है, ऐसे पुरोहित कह रहे हैं। मतलब वो गरीब आदमी उस अमीर आदमी के पास जाकर बहुत कुछ मांग सकता है, लाखों रुपए मांग सकता है, लेकिन जाकर एक मुट्ठी अन्न मांगता है। प्रभुपाद भी बताया करते थे कि ये जैसे है वैसे कोई बड़े टाटा बिरला के पास जाता है और जाके थोड़ा सा दान मांगता है, 10 पैसे 1 रुपए, जबकि वो लाखों लाखों रुपए मांग सकता है। तो भगवान तो हमें सब कुछ दे सकते हैं। सुदामा के उदाहरण में, उनकी लीला में हम देखते हैं कि सुदामा को उन्होंने क्या नहीं दिया, इतना ऐश्वर्य दिया जिसकी कल्पना इंद्र कई जन्मों में नहीं कर सकते थे। रुक्मिणी देवी ने वायदा किया कि मैं इस ब्राह्मण को इतना ऐश्वर्य प्रदान करूंगी कि जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकेगा। ध्रुव महाराज को तो भगवान ने स्वयं अपना धाम ही भेंट कर दिया, ध्रुव महाराज के हवाले कर दिया श्वेत द्वीप। और इतना ही नहीं, उस धाम का नाम ध्रुव के बाद फिर रखा गया, ध्रुव तारा। इस तरह से भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अपना धन तो देते ही हैं, भौतिक शक्ति की बात तो दूर है, अपना धाम देते हैं, अपने आप को बेच देते हैं भक्तों के चरणों में। गोपियों को भगवान ने कहा कि मैं आपके ऋण को चुका नहीं सकता, क्योंकि आपने जिस तरह से मेरी सेवा की है, मेरी भक्ति की है, वो इतना तीव्र है, इतना शुद्ध है, इतना महान है कि इसको मैं लौटा नहीं सकता। वैसे तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्, मैंने भगवत गीता में वचन दिया है कि जो जैसे मेरे शरण में आता है मैं उसका प्रतिकार करता हूं, मैं आदान प्रदान करता हूं, लेकिन आपकी भक्ति इतनी ज्यादा है कि मैं आदान प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी वो क्षमता ही नहीं है, वो सामर्थ्य ही नहीं है मेरे पास, मैं कुछ लौटा नहीं सकता। इसलिए आपकी जो सेवा है वही आपका श्रेष्ठ उपहार है, आपकी तनख्वाह है, पगार आपकी वही है, और मैं कुछ नहीं दे सकता। इसका मतलब है कि भगवान अपने आप को भी भक्तों के हवाले करते हैं, और इतना सब करने के बाद भी वो अपने आप को असमर्थ समझते हैं और सोचते हैं कि भक्तों को वास्तव में और बहुत कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं दे पा रहा हूं। इसलिए पुरोहित थोड़े शर्मिंदा हो गए हैं और भगवान से कहते हैं, आप जरा मन में सिर्फ गंभीरता से लीजिए मत, डोंट माइंड, आप जरा चिंता मत की, मेरे हमारे यजमान हैं आपके पास आ रहे हैं, ऐसा सब मांग रहे हैं, ठीक है आप बड़े कृपालु हैं, तो इसलिए आप इनको क्षमा कर दीजिए। समझ लीजिए कि जैसे बच्चा आके कुछ भी मांगता है वो मांग रहे हैं, तो आप उनको भक्ति दे दीजिए। तो इस तरह से पुरोहित जो कि भगवान के भक्त थे ऐसी प्रार्थना कर रहे थे। ये प्रार्थना कोई नई प्रार्थना नहीं है, इतिहास में कई लोगों ने ऐसे प्रार्थना की है। हाँ, संतान के लिए भगवान से प्रार्थना करना तो लाखों लाखों ऐसे उदाहरण है, आज भी हर एक व्यक्ति गृहस्थ में जिसको पुत्र या संतान नहीं होते भगवान के पास आते हैं। लेकिन भगवान के जैसा पुत्र मांगना ये कम लोग मांगते हैं, लेकिन फिर भी उदाहरण है। आप बता सकते हैं ऐसे कोई उदाहरण? सुतपा और प्रश्नी जब भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए कंस के कारागर में, तो उन्होंने उनको जानकारी दी उनके पूर्व दो जन्मों के बारे में और बताया कि हे माते और हे पिता, आप बहुत हजारों हजारों साल पहले ऊपर के लोकों में आपका जन्म हुआ था, आप प्रजापति थे, आपका नाम था हे माता प्रश्नी और हे पिता आपका नाम था सुतपा। आपने 12,000 दिव्य वर्षों तक मुझे प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। आपकी इच्छा थी कि मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त करना था, या बल्कि मुझे ही प्राप्त करना था आपको पुत्र के रूप में। इसलिए आपने तपस्या की, केवल सूखे आपने कंद मूल खाए, जमीन पर गिरे हुए पत्ते, सूखे हुए पत्ते खाए, और इस तरह से आपने 12,000 दिव्य वर्ष बिताए। उसके बाद में मैं आपके सामने प्रकट हुआ प्रश्नी गर्भ के रूप में और आपकी सेवा की, और इसके अगले जन्म में आपने अदिति और कश्यप के रूप में जन्म लिया और मैं आपके पुत्र के रूप में आया। उस समय मेरा नाम था उपेंद्र या त्रिविक्रम वामन देव, ये अवतार मैंने लिया और आपकी सेवा इस रूप में मैंने की, और इस तीसरे जन्म में मैंने कृष्ण के रूप में आप जन्म लिया है और आप देवकी और वसुदेव के रूप में यहां प्रकट हुए हो। तो उस समय भगवान ने उनको कहा था 3 जन्म आपको यहां बिताने पड़ेंगे, फिर मेरे गोलोक वृंदावन में आप वापस आ सकेंगे। और एक उदाहरण जो श्रीमद् भागवत में आता है वो है अत्रि मुनि का। 4th स्कंद में यह वर्णन आता है, अत्रि मुनि और अनसुया ये भी भगवान के भक्त थे, लेकिन अत्रि मुनि को उस समय ठीक से जानकारी नहीं थी कि भगवान कौन है। इतना जानते थे कि भगवान है, लेकिन भगवान का नाम क्या है, उनका रूप क्या है, दिखने में कैसे हैं, ये सारी चीजें विस्तार में उनको ज्ञान नहीं था। इसलिए उन्होंने जब तपस्या की, प्रार्थना की, तो उन्होंने जगदीश को बुलाया, ईश्वर को बुलाया, इस जगत के स्वामी। तो अद्भुत बात यह हुई कि तीनों उनके सामने आए, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी। एक दृष्टि से देखा जाए तो तीनों ही जगत के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। तो तीनों ने सोचा हमको बुला रहे हैं, शायद हमें बुला रहे हैं, जगदीश कहा, तीनों आ गए, क्योंकि उन्होंने सही तरह से नाम नहीं लिया था। जब तीनों प्रकट हो गए उनके सामने, अत्रि मुनि तपस्या कर रहे थे, एक पैर पर खड़े हुए थे, तो एक पैर पर लड़खड़ाते हुए उनके सामने आए, उनको दंडवत किया और कहा कि आप तीनों आए क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम में से किसको बुलाया आपने, हम तीनों आ गए यहां पर। तो उन्होंने कहा कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए था। तो आप जैसा पुत्र जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि देखो हम जैसा पुत्र कौन हो सकता है, हमें ही आना होगा, नहीं तो और कोई उपाय नहीं। इसलिए उनके फिर 3 पुत्र हुए ब्रह्मा जी से। पुत्र जो उत्पन्न हुए उनका नाम क्या था? सोम, चंद्रदेव। फिर शिव जी से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो कौन थे? दुर्वासा, शिव जी के अंशावतार। और विष्णु के अंशावतार जो प्रकट हुए इनके पुत्र के रूप में वो थे दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय विष्णु के रूप है। तो पुराणों में यह भी बताया जाता है कि केवल 1 पुत्र हुए जो कि विष्णु के रूप थे, या तीनों के मिलित रूप थे, ऐसे पुराणों में अलग अलग वर्णन आते हैं। लेकिन अत्रि मुनि ने ऐसी प्रार्थना की थी और भगवान ने कहा था कि मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता है, मुझे ही आना होगा, मेरे बराबर कौन है भला। इसलिए वो खुद दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। दत्तात्रेय अवतार का वर्णन भी इन अवतारों में आता है जो कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को करते हैं प्रथम स्कंद में। तो ना महाराज नाभि ने भी इसी तरह से प्रार्थना यहां पर की है। लेकिन हमें जानना चाहिए पुरोहितों की प्रार्थना से कि हमें किसी भौतिक चीज के लिए भगवान के पास नहीं आना चाहिए, भले वो भगवान जैसा पुत्र क्यों ना हो। हमें केवल चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में चलना है, उनके आदेश का पालन करते हुए केवल अहेतु की अप्रतिहता भक्ति की अभिलाषा रखनी चाहिए। आज श्रीपाद मध्वाचार्य का आविर्भाव दिवस है। मध्वाचार्य हमारे संप्रदाय में एक प्रमुख आचार्य रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी मध्व संप्रदाय में दीक्षा ली। मध्वाचार्य का आविर्भाव करीब करीब 800 साल पहले उडुपी के पास पाजक क्षेत्र नाम के गांव में हुई। वहां एक ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था मध्यगेह भट्ट। बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, भगवान विष्णु के भक्त भी थे। कई साल उन्होंने अनंतेश्वर मंदिर में जाके भगवान के उस हरि हर रूप की पूजा की थी। ऐसा विशेष रूप है जो शिवजी और विष्णु का मिलित रूप है। ऐसे कई जगह रूप दिखाई पड़ते हैं, जैसे ओडिशा में भी है और यहाँ कर्नाटक में भी कई स्थान हैं। हरि हर एक शहर भी है, हरि हर। वादिराज स्वामी बताते हैं कि ऐसा क्यों है कि एक लिंग में विष्णु ने भी रूप लिया, क्योंकि विष्णु बताना चाहते हैं कि मैं शिवजी के हृदय में भी परमात्मा हूं, न केवल साधारण जीवों के हृदय में लेकिन शिवजी के हृदय में भी मैं उपस्थित हूं। तो अनंतेश्वर की प्रार्थना कई साल किए और फिर उनको पुत्र हुए। पुत्र का जन्म जब हुआ तो उनका नाम रखा गया वासुदेव। वासुदेव बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ही शरीर से हृष्ट पुष्ट थे और बहुत ही जल्दी बड़े हो गए। 8 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली अच्युत प्रेक्ष से। जब संन्यास लेना चाहा तो पिताजी ने माता ने बहुत रो रो कर उनको रोका, कहा कि नहीं जाना। तो उस समय वासुदेव ने कहा कि ठीक है, जब तक आपका दूसरा पुत्र नहीं हो मैं नहीं जाऊंगा। फिर दूसरा पुत्र का जन्म जब हुआ उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के पहले भी उनके पिताजी उनके पैर में पड़े, नहीं जाना नहीं जाना। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब कोई लड़का ब्रह्मचारी होने के लिए हमारे मंदिर में आता है तो बहुत उत्पात हो जाता है जगह जगह। माता पिता बहुत रोते हैं, कई बार बच्चे के पैर में भी पड़ जाते हैं। तो उस समय वासुदेव ने कहा कि पिताजी, लड़के के पैर केवल एक अवस्था में पड़ते हैं जब वो सन्यासी है, नहीं तो पिताजी को पुत्र के पैर पड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो पिताजी पैर छू रहा है तो इसका मतलब कि आपने आशीर्वाद दे दिया है मुझे सन्यासी होने के लिए, मैं सन्यासी हो गया हूँ। फिर उन्होंने सन्यास ले लिया। दीक्षा के समय 8 साल की उम्र में उनका नाम हो गया था पूर्ण प्रज्ञा। और आगे चल के उनको अच्युत प्रेक्ष ने मठाधीश बना दिया। फिर उनका नाम हो गया आनंद तीर्थ, क्योंकि उस समय उन्होंने दीक्षा जो ली थी अद्वैत संप्रदाय के अनुसार अच्युत प्रेक्ष शास्त्रों के ऊपर व्याख्या करते थे और ये पसंद नहीं आया मध्वाचार्य को। उन्होंने इस सिद्धांत को नकारने का प्रयास किया, इनका खंडन किया बहुत सख्त तरीके से। तो उस समय अच्युत प्रेक्ष ने समझ लिया है कि ये साधारण बालक नहीं है। कई बार उनकी परीक्षा की और एक बार जब वो गलत टीका कर रहे थे अद्वैत शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुसार, तो मध्वाचार्य ने उनसे कहा कि ये ठीक नहीं है, ये वास्तव में इस तरह से होना चाहिए। तो उस समय अच्युत प्रेक्ष को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुम ये भागवत इतनी अच्छी तरह से ही जानते हो, तो श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में जो प्रोज में, मतलब श्लोक के रूप में नहीं केवल लंबे रूप में जो श्लोक हैं, उस सारे श्लोकों को सुनाओ। और वो हम प्रसंग अभी देख रहे हैं, ये सब जो चल रहे हैं ना, साधारण जो श्लोक हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि छंद में, अलग अलग छंदों में, जैसे कि गायत्री। तो पंचम स्कंद में ऐसे काफी अध्याय ऐसे हैं जहां सारे श्लोक ऐसे ही हैं। तो अचित प्रश्न कहा कि ठीक है, इतना ही तुम्हें मालूम है तो ऐसे ही बताओ। तो मध्वाचार्य ने एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे श्लोक को बोल दिए और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद उन्होंने उनको मठाधीश बना दिया। फिर मठाधीश बनने के बाद वो कई जगह भ्रमण करते करते दक्षिण भारत में गए, अद्वैतवादियों को उन्होंने हरा दिया, कई बड़े अद्वैती सन्यासी के साथ उनका वाद विवाद हुआ मंदिरों में अलग अलग जगह, और उन्होंने इनको हरा दिया। और खास करके अद्वैती लोग बड़े घबरा गए कि ये जो सन्यासी हैं इसका यश इतना फैल रहा है तो हमारा शंकर सिद्धांत जो है वो खतरे में है। तो एक सन्यासी थे अद्वैती, उन्होंने उनके सारे ग्रंथ जो है चुरा लिए। फिर मध्वाचार्य को पता चल गया और खैर वापस उन्होंने वो ग्रंथ ले लिए। लेकिन कहने का मतलब है कि अद्वैती लोग कितना कष्ट ले रहे थे, उनको तंग, उनको कष्ट देने के लिए वो खुद कष्ट ले रहे थे। लेकिन जितना भी वो प्रयास क्यों न करें, मध्वाचार्य हमेशा विजयी रहते थे। और एक राजा थे जिनका नाम था जयसिंह, उनके दरबार में एक पंडित थे। तो उस पंडित का नाम था त्रिविक्रम पंडित। तो वो बड़े विद्वान थे, उन्होंने भी चैलेंज किया मध्वाचार्य को और 15 दिन लगातार वाद हुआ और फिर मध्वाचार्य ने उनको हरा दिया। उस समय त्रिविक्रम पंडित ने आश्रय ग्रहण किया मध्वाचार्य का और उनका शिष्य बनना चाहे वो, मध्वाचार्य ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उनको नाम दिया त्रिविक्रम आचार्य और उनको कहा कि आप ब्रह्मसूत्र के ऊपर वैष्णव दृष्टांत के से आप टीका लिखो। और उन्होंने लिखा। और ये त्रिविक्रम पंडित के पुत्र हुए नारायण आचार्य, जिन्होंने आगे चल के सुमध्व विजय ये ग्रंथ लिखा। मध्वाचार्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जो जानकारी आती है वो इस ग्रंथ से आती है, सुमध्व विजय नारायणाचार्य विचरित विरचित। और आगे चल के फिर उन्होंने सोचा कि मुझे उत्तर भारत भी जाना चाहिए। कई जगह से घूमे, आखिर में बद्री का आश्रम पहुंचे। वहां पर कई दिन उन्होंने तपस्या की, उपवास किया और फिर आगे वेद व्यास जी का दर्शन करने के लिए ऊपर गए शम्याप्राश में, और वहां पर वेद व्यास जी का दर्शन भी हुआ, उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बाद तेजस्वी अवस्था में आकर उन्होंने फिर ब्रह्मसूत्र के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा। क्योंकि दक्षिण भारत में जब वो गए थे तो कई सन्यासियों ने उनको कहा था कि अगर तुम्हारा प्रमाणिक है संप्रदाय, तुम्हारा सिद्धांत, तो तुम्हारे पास ब्रह्मसूत्र का भाष्य क्यों नहीं है, टीका क्यों नहीं है। उन्होंने कहा था सही समय में करूंगा सब। तो इस बार वो समय आ गया था, वेद व्यास की कृपा से उन्होंने ब्रह्मसूत्र के ऊपर टीका लिख दी और फिर वहां से लौट कर आए। रास्ते में उन्होंने बहुत अद्भुत कार्य कर दिखाया, क्योंकि न केवल बुद्धि से लेकिन शरीर से भी वो बहुत प्रबल थे। उनका शरीर बड़ा हृष्ट पुष्ट था, दिखने में सुंदर भी बहुत थे। उनकी आवाज भी बहुत सुरीली थी, बहुत अच्छी तरह से घने बादल की तरह जैसे गड़गड़ाते वैसे उनकी आवाज थी। बहुत सुंदर भजन भी गाया करते थे, श्लोकों का पाठ किया करते थे। और वापस लौटते वक्त उन्होंने शेरों को अपने हाथों से मारा जो आक्रमण किए थे। कई डाकुओं को उन्होंने एक साथ अकेले हरा दिया, मार दिया। ऐसे सारे कार्य, अद्भुत से अद्भुत कार्य उन्होंने कर दिए। एक बार जब कोई युद्ध चल रहा था एक प्रांत से जहां से कि वो गुजर रहे थे, तो वहां के जो मुसलमान सुल्तान थे, उनका नाम था शायद जलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने बंदी लगा दी थी कि कोई गंगा पार करके नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ युद्ध चल रहा है, कोई नौका नहीं कुछ नहीं, लेकिन अपने शिष्यों के साथ वो तैरते हुए आ गए और फिर सुल्तान के सैनिकों ने उनको गिरफ्तार किया और मध्वाचार्य ने फारसी भाषा में, पर्शियन भाषा में बोलकर सुल्तान को इतना प्रभावित किया कि सुल्तान ने छोड़ दिया उनको। और एक जगह ऐसे हुआ कि कोई एक राजा एक टैंक बना रहा था, एक सरोवर खोद रहा था जिसमें पानी हो कृषि के लिए इत्यादि, और जो भी प्रवासी वहां से, यात्री वहां से जा रहे थे उनको उस काम में लगा रहे थे। जो भी गुजर रहा था पकड़ लिया, उसको लगा दिया। तो मध्वाचार्य उनके शिष्यों के साथ जा रहे थे, उनको भी उन्होंने यह काम में लगा दिया। तो मध्वाचार्य ने इस तरह से उनसे बात किया कि राजा को खोदने के काम में लगा के चले गए। तो ऐसे कई सारे अद्भुत कार्य उन्होंने किए। उनका इतना अद्भुत बल, इतनी अद्भुत बुद्धि क्यों? बताया जाता है कि वो वायुदेव के अंशावतार हैं, भीम के भाई, हनुमान के भाई। इसलिए आप दक्षिण कन्नड़ में जाएंगे तो यहाँ पर आप हमेशा इन तीनों की मूर्तियाँ साथ में देखेंगे, हनुमान जी, भीम और मध्वाचार्य, तीनों भाई, तीनों वायुपुत्र। और इस तरह से मध्वाचार्य ने वापस आकर और ग्रंथ लिखे। दोबारा वो बद्रिकाश्रम गए, भगवत गीता के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा, वहाँ पर बैठकर वो दिखाया भगवान को, बद्री नारायण को। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, ये टीका सही है। फिर वो भगवत गीता को प्रकाशन किया उन्होंने। और इस तरह से खास करके मायावाद का खंडन बहुत सख्त तरीके से उन्होंने किया, निराकारवादियों का। और चैतन्य महाप्रभु ने उनके संप्रदाय से दो विशेष बातें ली। एक ये सिद्धांत कि भगवान की अर्चा विग्रह है, वो भगवान से अभिन्न है, भगवान की मूर्ति में और भगवान में कोई अंतर नहीं, ये एक सिद्धांत। और दूसरा है मायावादियों, मायावाद सिद्धांत का सख्त खंडन। ये दो बातें हैं चैतन्य महाप्रभु से ने मध्व संप्रदाय से लिए। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने जो गौड़ीय संप्रदाय आरंभ किया वो एक पांचवा ही संप्रदाय के समान है। हालांकि मध्व संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली क्योंकि वो बताना चाहते थे कि चारों संप्रदाय ही ये प्रामाणिक संप्रदाय हैं, किसी को इन चारों संप्रदायों में से किसी एक से जुड़ना ही चाहिए। लेकिन फिर भी उनका जो सिद्धांत महाप्रभु का है वो थोड़ा अलग भी है, समानताएं भी हैं, लेकिन उनकी संप्रदाय विशेष है। मध्वाचार्य के संप्रदाय से उन्होंने ये दो पॉइंट लिए और बाकी तीन संप्रदायों से भी दो 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 पॉइंट लिए उन्होंने, और ऐसे गौड़ी संप्रदाय के 8 पॉइंट बन गए जिनके ऊपर ये संप्रदाय आधारित है। मध्वाचार्य ने उडुपी में रहकर कृष्ण मंदिर की स्थापना की। जब वो सागर के तट पर गए थे और एक बार ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने एक जहाज को देखा जो कि वहाँ अटक गया था तूफान में। उन्होंने अपना अंग वस्त्र को उठाया और मार्गदर्शन किया उस जहाज को। हवा रुक गई और वो जहाज का जो कप्तान था, जो मालिक था, इतना कृतज्ञ हो गया कि उन्होंने कहा कि आप ये जहाज से जो भी है वो आप ले सकते हैं। तो मध्वाचार्य ने कहा कि मैं सन्यासी हूँ, मुझे ये सब धन वगैरह है उससे की कोई काम नहीं, लेकिन आपके नौके के भीतर नीचे भाग में जो गोपी चंदन है, जो पत्थर है, जो मिट्टी है, वो मुझे चाहिए। गोपी चंदन का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो जहाज द्वारका से आ रही थी और गोपी चंदन जो हम लगाते हैं कपाल पे, शरीर पे, वो केवल द्वारका में मिलता है। तो जब वो गोपी चंदन वो मालिक ने, जहाज के मालिक ने भरा था नौके में, इस दृष्टि से नहीं भरा था कि ये गोपी चंदन है, उन्होंने उसको पत्थर समझ के रखा था क्योंकि वजन को बैलेंस संतुलित करने के लिए, ताकि समुद्र में इधर उधर उल्टा पुल्टा ना हो जाए, उसकी कीमत नहीं समझे। लेकिन मध्वाचार्य ने पहचान लिया, उन्होंने कहा कि मुझे ये दे दो। तो उन्होंने जब दिया, वो बाहर लाए जमीन पर, तो वो गोपी चंदन टूट गया और अंदर से बाल कृष्ण की सुंदर मूर्ति प्रकट हुई और वही मूर्ति आज उडुपी के कृष्ण मंदिर में स्थापित है। और फिर इस एक मूर्ति को 30 लोग भी उठा नहीं पाए, इतना वजन था उसका, मूर्ति का। लेकिन अकेले मध्वाचार्य अपने कंधों पर लेकर मूर्ति को वापस उडुपी ले आए, जो कि कई किलोमीटर दूर है। जिस स्थान में ये मूर्ति प्राप्त हुई उस स्थान का नाम है मलपे। मलपे से उडुपी कई किलोमीटर दूर है। हम में से जो उडुपी यात्रा में गए थे, हम इन सारे स्थानों में जाकर आए जहाँ उनका जन्म हुआ पाजक क्षेत्र, जहाँ उन्होंने मूर्ति प्राप्त की मल पे, जहाँ आकर अंत में उन्होंने उडुपी मंदिर कृष्ण मंदिर की स्थापना की, वहाँ सब जगह में हम सब जाकर आए थे। फिर उन्होंने अष्ट मठों की स्थापना की वहाँ पर उडुपी में, और अपने शिष्यों में से जो 8 प्रमुख सन्यासी थे उनको एक एक मठ में उन्होंने सेवा में लगा दिया, और आने वाले कई सालों के लिए, पीढ़ियों के लिए जो अर्चना की पद्धति है वो उन्होंने स्थापित कर दी। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, बहुत सारा प्रचार भी किया उन्होंने, और अंत में अनंतेश्वर मंदिर में जब वो ऐतरीय उपनिषद के ऊपर प्रवचन दे रहे थे तो इस जगत से वो अप्रकट हुए और फिर वो बद्रिकाश्रम चले गए, जहाँ की वो आज भी हैं। आज यहाँ पर हमारे भौतिक दृष्टि से वो ओझल हो गए, लेकिन इस धरातल पे वो उपस्थित हैं सूक्ष्म रूप में, अपने आध्यात्मिक रूप में, बद्रिकाश्रम में अपने गुरु व्यासदेव के साथ। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है, हम उनकी कृपा याचना कर सकते हैं कि जो आध्यात्मिक बल उनके अंदर था उसका एक बूंद हमें भी मिले, ताकि हम भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शुद्धता से और दृढ़ता से करें। आज विजयदशमी भी है, इस दिवस पर कई साल पहले त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया था, इसलिए दशहरा का जो उत्सव है इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रभु रामचंद्र जी धर्म की संस्थापना करने आए थे और रावण अधर्म के सबसे अच्छे प्रतीक थे, इसलिए जब प्रभु रामचंद्र ने रावण का वध किया ये धर्म के विजय का प्रतीक है अधर्म के प्रति, इसलिए सारे भक्तों के लिए, पुण्यवान लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण दिवस है। अंत में धर्म का विजय ही होता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। तो जो लोग धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं धर्म ही उनकी रक्षा करता है और धर्म का ही अंत में विजय होता है। तो कथा अब यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो भगवान अपना सारा काम छोड़कर वैकुंठ में लक्ष्मी देवी को भी छोड़कर घर आएंगे, ऐसे भावना से हमें करना चाहिए, बराबर है। तो ये उदाहरण बड़ा अच्छा है कि नहीं? अगली बार आप जाप करने बैठ रहे हैं इस उदाहरण को याद रखिए। और प्रभुपाद जी ने जो उदाहरण दिया था, बच्चा अपने माँ को पुकारता है, इस भावना से हमें जप करना चाहिए, हरिनाम लेना चाहिए, प्रभु को आगे बढ़ाने के लिए। इस बात को कैसे सही भावना से जप करना चाहिए,
बोलिए। जीवन नित्य जन हसार ताहे नाना विद विपद बार, नामश्रया कोरी जतने तुमी ताकह अपन काजे। इसमें दो शब्द है, जीवन अनित्य। अभी प्रभु जी क्या पूछ रहे थे हमारा, हम आप सबको बर्थडे मालूम है, डेट क्या है बर्थडे का? हैप्पी बर्थडे है। और दूसरा डेट भी मालूम है, हैप्पी वो मालूम नहीं है क्यों? जब आदमी नौकरी में जाता है पता है उनको, गवर्नमेंट जॉब है तो कितना साल में रिटायरमेंट होना है, उस प्रकार हम भी रिटायरमेंट डेट। जीवन अनित्य वो शब्द बहुत अच्छा बताया। और दूसरा शब्द क्या बताया? नानाविध विपाद। क्या विपाद क्या होता है? अभी प्रभु जी ने कितना विध बताया? एक द्रौपदी का बताया, और दूसरा शहर का बताया, तीसरा डाकू का बताया। नानाविध कितना होता है? नानाविध 10 प्रकार की, 20 प्रकार की, कितने प्रकार की? हाँ, पदम पदम यद विपदाम। क्या भागवत ने क्या कहा? पदम पदम कतरा है। बहुत ही सुंदर। अभी प्रभु जी कह रहे थे किस भाव से भगवान को पुकारना। और ये जो अरुणोदय कीर्तन और भी अनेक कीर्तन, अनेक कीर्तन, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की भगवान के वो किस भाव से पुकार रहे हैं, वो मेरे से उसको आपको समझाना नहीं होगा, और कोई आपको समझा सकते हैं, मगर मैं इतना कह सकता हूं उससे यदि हमारा मन